एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया,
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे ताकि हम तेरे वचनों को समझ सके। विशेषकर मेरे श्रोताओं के संगो पिता, उन्हें तेरे वचनों को समझने और तेरे राह में चलने के लिए मदद कर। पिता, उन्हें बहुतायत से आशीष दे और मेरे संगो पिता तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ्य के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है वैश्विक विद्रोह और कुलपति। हम बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति के 28 का 15 में पढ़ते हैं, देख मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा, क्योंकि मैं अपने कहे हुए काम को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर ने यह वचन याकूब को उसके स्वप्न में दिया, यह आश्वासन दिया कि परमेश्वर उसके साथ रहेगा, उसे ना छोड़ेगा और अपना प्रतिज्ञा उसके और उसके वंश में पूरा करेगा। प्यारो, पतन के बाद की कहानियां धोखे और टूटे हुए रिश्तों के विषयों को और भी गहराई तक ले जाती है जो पहली बार अदन में देखे गए थे। इस दौरान संघर्ष दुनिया भर में फैलता है और विविधतापूर्ण होता है। कैन और हाबिल की कहानी में उपासना कला और मृत्यु का उत्प्रेरक बन जाती है जो पूरे इतिहास में एक आवर्ती विषय है। जल प्रलय की कहानी बताती है कि विद्रोह और पाप किस तरह परमेश्वर द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट कर देते हैं। पाप न केवल सृष्टि को विकृत करता है बल्कि उसे नष्ट भी कर देता है। अब्राहम का अनुभव संघर्ष में एक बड़ा प्रोत्साहन है जिसमें परमेश्वर विद्रोह के परिणामों को स्वयं पर लेने की अपनी इच्छा प्रदर्शित करता है। वह हमारा प्रतिस्थापन बन जाएगा। फिर याकूब और एसाव तथा यूसुफ और उसके भाइयों की कहानियों में हम देखते हैं कि टूटे हुए रिश्तों का निरंतर अंतर संबंध ही वह साधन है जिसका उपयोग शैतान परिवारों और लोगों के समूहों को नष्ट करने के लिए करता है। फिर भी इन सब के बीच परमेश्वर की विश्वास योग्यता अपने परेशान बच्चों को सहारा देने और उनका पालन पोषण करने के द्वारा जारी रहती है। प्यारो, आज हम यही कुलपतियों के जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह उनको अगुवाई किया, उनका सहायता किया। जो भी कि वे समस्या में फंसे हुए थे, शैतान उनको अपने परीक्षाओं में लाना चाहता था और गिराना चाहता था, लेकिन परमेश्वर उन सब के संग था और उन्हें संभाले रखा। हम कैन और हाबिल के विषय में उत्पत्ति 4 अध्याय में पढ़ते हैं। 4:1-15 अध्याय में उनके विषय में हम जान सकते हैं। कैन के जन्म पर हवा बहुत खुशी हुई थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसने अभी अभी एक उद्धारकर्ता को जन्म दिया है जिसका वादा उत्पत्ति 3:15 में किया गया था। उसने कहा, मैंने यहोवा से एक पुरुष प्राप्त किया है। उत्पत्ति 4:1 में शाब्दिक रूप के अनुवादित पाठ इस प्रकार हो सकता है, मैं एक पुरुष बनाया है। प्रभु अपने मूल स्तर पर यह केवल यह प्रकट करता है कि हवा ने सोचा कि उसने उस व्यक्ति को जन्म दिया है जिसका वादा प्रभु ने किया था। उत्पत्ति 3:15 में वह सोचने लगी थी कि यही उद्धार करता है। कैन के बचपन के वर्षों की खुशी और नए माता पिता द्वारा अपने पहले बच्चे की के विकास का गर्व के आनंद लेने की नवीनता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। कथा जल्दी से दूसरे जन्म और फिर 2 युवा पुरुषों की पूजा करने की ओर बढ़ जाती है। हालांकि जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, पूजा को लेकर मतभेद त्रासदी की ओर ले जाती है। कैन और हाबिल अपने अपने बलिदान परमेश्वर के पास लाते हैं। कैन साग सब्जी और फल लाता है जो वह उगाता था और हाबिल एक मेमना लाता है जो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान को दिखलाता था। हाबिल का बलिदान तो स्वीकार हुआ लेकिन कैन का बलिदान स्वीकार नहीं हुआ, जिसके कारण कैन अपने भाई हाबिल से गुस्सा हो गया और उसे मार डाला, उसे खेत पर ले गया और उनके बीच में बहस हुई और कैन ने अपने भाई हाबिल को मार दिया। इस तरह का आदम और हवा कभी नहीं सोचे थे होंगे कि उनका पहला बेटा उसका दूसरा बेटा को मार देगा। यह बहुत ही दुखद अनुभव उनके जीवन में थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर आदम और हवा को तीसरा पुत्र देता है, उसका नाम वे लोग सेथ रखते हैं, और इससे उनका आशा बढ़ता है कि परमेश्वर सेठ के द्वारा अपना प्रतिज्ञा, बचाव का प्रतिज्ञा वह उनके लिए उनके जीवन में पूरा करेगा। और हाँ भाइयों और बहनों, हम बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर सेठ के और उसके वंश के द्वारा अपना योजना को पूरा करता है। सेठ के वंश से यीशु मसीह आता है और लोगों के लिए कुर्बान होता है, लोगों के पाप को क्षमा करने के लिए अपने आप को दे देता है, अपना जीवन बलिदान कर देता है। हम देखते हैं उसके बाद नूह के परिया में जल प्रलय होती है। हम इसे उत्पत्ति 6:1-13 में पढ़ पाते हैं। जल प्रलय में हम सृष्टि के विषय कार्यों में आंशिक उलटफेर देखते हैं। परमेश्वर ने जिन चीजों को अलग किया था उसमें से कई चीजें अब वापस एक साथ आ गई हैं। ऊपर का पानी और नीचे का पानी, समुद्र और सूखी जमीन, समुद्र की मछलियां, हवा के पक्षी और धरती पर घूमने वाले सभी जीव जंतु सभी एक साथ आ गए हैं। ऐसा लगता है कि धरती निराकार और खाली होने की ओर वापस जा रही थी, जैसा कि हम पढ़े थे उत्पत्ति 1:2 में। यह किस लिए हुआ, यह क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को भूल गए थे और वे लोग बुरे रास्ता में चले गए थे। बाइबल बतलाती है उत्पत्ति 6 में कि उनका हर एक सोच बुरा ही था। परमेश्वर अफसोस किया कि उन्होंने मनुष्य को बनाया और वह चाहता था कि वह सृष्टि इस पृथ्वी को साफ करेगा, इसलिए उन्होंने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा ताकि वह अपने आप को और अपने परिवार को बचा सके, और जो भी विश्वास करे उनके लिए यह न्योता था कि वे लोग भी जहाज में आकर बच सके। लेकिन बहुत से लोग हंसी मजाक किए और नूह के जहाज में नहीं आए। लेकिन जब समय आया, परमेश्वर बारिश भेजा और नूह और उसके परिवार और जितने भी जीव जंतु उसके साथ अंदर गए, उन्हें परमेश्वर बचा लिया। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं किए और अंदर नहीं गए, वे लोग नीचे रह गए और बाढ़ से, वर्षा से वे लोग नाश हो गए। परमेश्वर नूह के द्वारा लोगों को बचाने चाहता था। नूह धार्मिकता का प्रचारक था। जो कोई भी उसमें विश्वास करता वह परमेश्वर के योजना के तहत बचाया जा सकता था। इसके बाद हम अब्राहम के विषय में पाते हैं। अब्राहम का जीवन उत्पत्ति 12 से आगे हम उसके कहानी पाते हैं। जबकि अब्राहम, जिसे पहले अब्राहम कहा जाता था, पहले अपनी वफादारी के लिए जाना जाता है, उसके जीवन में भी कई चुनौतियां आई और कई बार वह विफल भी हुआ, किंतु परमेश्वर उसे संभाला और आगे चलकर वह विश्वास में मजबूत हुआ। और 75 साल में जिसे परमेश्वर एक बालक देने का प्रतिज्ञा किया था, वह करीब 25 साल उसे रुकना पड़ा और अंत में परमेश्वर उसका खुद का, अब्राहम और उसकी अपनी पत्नी सारा के द्वारा एक बालक देता है जिसका नाम इसहाक उन्होंने रखा। और परमेश्वर उसके द्वारा अपना योजना पूरा करना चाहता था। अंतर अब्राहम की हम जीवन में पाते हैं कि वह परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहा। एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को अपने उस बेटा को बलिदान करने के लिए मांग किया जिसे वह अति प्रेम करता था। उसका अपना प्रिय पुत्र जिसे वह 100 वर्ष में पाया था, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम और सारा को दिया था, अब्राहम के लिए बहुत बड़ा चुनौती थी। लेकिन अब्राहम उस काम में सफल हुआ, उसमें वह खरा निकला, वह परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर ने उसे, जैसा कि हम कह सकते हैं, मरे हुओं में से फिर से इसहाक को अब्राहम के लिए दे दिया। वहां पर जब वह अपना बच्चा को मारने चाह रहा था, एक दूत का द्वारा आवाज आई, अब्राहम मत करो, यह पर्याप्त है, मैंने देख लिया कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। परमेश्वर ने यह कहा, परमेश्वर के दूत ने यह कहा, और उसके जगह में उसे एक बकरा झाड़ी में फंसा हुआ दिखा दी और कहा कि उस बकरा को जा करके तो बलिदान कर। यह प्रभु यीशु मसीह को संकेत करता था, जो परमेश्वर अपने पुत्र को इस दुनिया के लोगों के लिए बलिदान करने वाला था, उन्हें बचाने के लिए, हमारे और आपके पाप को क्षमा करने के लिए परमेश्वर अपना पुत्र को बलिदान करने वाला था। और यह योजना परमेश्वर ने किया और यह पूरा किया। अब्राहम को अपना पुत्र को बलिदान करना नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर अपना पुत्र को इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए दे दिया कि पापी लोग, आप और मैं, उसमें विश्वास करके पाप क्षमा पा सकते हैं और उसमें विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। याकूब और एसाव का कहानी आगे हम देखते हैं, दो भाइयों की कहानी। बड़ा भाई एसाव जो कि पहला उठा था, उसको विशेष आशीष मिलना था, लेकिन वह विश्वासी नहीं रहा, इसीलिए उसका आशीष छोटा भाई याकूब को मिलने वाला था। उसकी माँ रबेका याकूब को कहती है, तेरा पिता बूढ़ा हो गया है, वह तेरा बड़े भाई एसाव को आशीष देना चाहता है, मैंने सुन लिया है, इसलिए तू दो बकरी के बच्चे को लेकर के आओ और मैं उसे तैयार करूंगी और तू उसे लेकर के भोजन जो तेरे पिता को अच्छा लगता है तेरे पिता को लेकर खिला कि वह आशीष तुझे देगा। और याकूब यह डरते हुए भी वह यह किया, अपनी माँ का बात सुना, और इसहाक का आशीष याकूब को मिला। लेकिन इसके बाद एसाव जब आया और यह जाना कि याकूब अपने पिता का आशीष ले चुका था, ले लिया था, तब वह उससे बहुत घृणा करने लगा, बहुत गुस्सा किया और उसको मार डालने चाहता था, उसको जान से खत्म करने चाहता था। और इसको उसकी माँ रबेका सुनती है और याकूब को कहती है, मेरे बात सुनो, तू अपने मामा के घर, लबान के घर, परान देश में चले जाओ, जब तक कि तेरा भाई का गुस्सा नहीं खत्म होता है। और इस तरह रबेका अपने छोटे बेटा याकूब को अपने भाई हारान के घर भेज देती है। वहाँ वह बहुत साल तक रहता है, करीब 20 साल रहता है। लेकिन जब वह वहाँ काम कर रहा था, अपने पत्नी रेचल के लिए वह काम कर रहा था अपने मामा के घर में, उसे वह समय बहुत अधिक नहीं लगा, किंतु वह अपने माँ से 20 साल दूर था। और अपनी माँ से हम इतिहास में पाते हैं कि वह फिर नहीं मिल पाया। यहाँ हम महान विवाद में हम पाते हैं, यह जो संघर्ष चल रहा है अच्छाई और बुराई के बीच में, यहाँ हम पाते हैं कि लोग कोई सच्चाई को चुनते हैं, कोई गलत रास्ता को चुनते हैं, कोई परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, कोई दुनिया पर भरोसा करते हैं, या कोई अपने आप पर भरोसा करते हैं। हम पाते हैं कि एसाव अपने आप पर भरोसा किया, दुनिया की चीज़ों को चाहा, परमेश्वर के बातों पर वह भरोसा नहीं किया, परमेश्वर के राहों पर वह नहीं चला, इसलिए परमेश्वर का आशीष याकूब को मिला। हम यह कहानी में पाते हैं कि याकूब अपने घर से बहुत दूर भाग जा रहा था, वह घबराया हुआ था, नहीं जान रहा था कि आगे वह कैसा रहेगा, कहाँ रहेगा और उसका जीवन कैसा चलेगा। लेकिन इसी समय परमेश्वर का यह वचन उसके पास आता है कि तुम मत घबराना, मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। परमेश्वर का यह वचन उसे स्वप्न में मिला, क्योंकि मैं अपने कहे हुए काम को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर का यह वचन और आश्वासन याकूब को मिला। यह हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 28:15 में, और याकूब वहाँ पर 20 साल रहता है। उसके बाद वह लौट करके आता है। लेकिन जब वह लौट करके आ रहा था, वह डरा हुआ था, घबराया हुआ था। अपने भाई से मिलने के लिए वह बहुत डरा हुआ था, लेकिन परमेश्वर उसका सहायता किया। और रात में एक दिन वह एक दूत से संघर्ष कर रहा था, और वह दूत उसे छूता है और उसके पैर में वह छूता है, उसके जांग पर छूता है, और याकूब लंगड़ाने लगता है और लंगड़ाते हुए अपने भाई से मिलने आता है। उससे पहले वह उसको कुछ वरदान भी भेजे थे, तोहफा भी भेजे थे, और ऐसा का गुस्सा दूर हो गया था। परमेश्वर उसके संग था, याकूब के संग था, और उसे अपने भाई ऐसाव से बचा लिया और यह आश्वासन दिया कि परमेश्वर उसके संग है, उसे आशीष देगा और उसे नहीं छोड़ेगा। इसी तरह हम पाते हैं यूसुफ और उसके भाइयों की कहानी। याकूब के 12 पुत्र में यूसुफ 11वां था और उसका छोटा भाई बेंजामिन था। यूसुफ को याकूब बहुत प्रेम करता था और उसके लिए एक रंगीनी पोशाक दिया था, जिसे उसके भाइयों का उसके प्रति ईर्ष्या हुई और उसे मार डालने चाहते थे। इससे अधिक यूसुफ 2 स्वप्न को भी अपने भाइयों को बतलाया, जिसमें यह दर्शाता था कि परमेश्वर उसके संग है और उसे वह बड़ा बनाने चाहता है, जबकि उसके भाई लोग उसके दास होंगे। उसके भाइयों को यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह उससे निपटने चाहते थे। और एक दिन जब यूसुफ उनके पास उनसे मिलने आया, जैसा कि उसका पिता उसे भेजा था कुछ खाना लेकर के अपने भाइयों का खबर लेने के लिए भेजा था, वे लोग जब उसे देखे, वे दूर से ही देखे और उसके खाने का चीजों को वह छीन लिए और उसके वस्त्र रंगीनी कपड़ों को भी उतार लिए और यूसुफ को उस कुआं में फेंक दिए जहां पानी नहीं था। वह सूखा कुआं में वह फेंक दिए और वह सोच रहे थे कि वह ही मर जाएगा, लेकिन वैसा नहीं होता है। उसके बाद कोई व्यापारी लोग आते हैं और किन्हीं ने सोचा कि उन्हें यूसुफ को उन व्यापारियों को बेच देंगे कि उन्हें कुछ पैसा भी मिल जाएगा। इसमें कहने वाला था यहूदा और लोग राजी हुए। इसी तरह वे लोग उसे बेच दिए, इस्माइलियों के बीच में बेच दिया, और इस्माइलियों ने उन्हें लेकर के मिस्र में बेच दिया, और मिस्र में वह एक ऐसा आदमी के पास बेचा गया और दास बन गया जो कि एक बड़ा सेना का या राजा का सेना का रखवाली करने वाला था, बड़ा हाकिम, सेना में उसका बड़ा पद था, और यूसुफ उसका सेवा कर रहा था। काफी दिन वह अच्छा काम किया, परमेश्वर उस घर को आशीष दिया, लेकिन उस घर का मालिक पोतीफर को उसकी पत्नी गलत शिकायत की, जिसके कारण पोतीफर गुस्सा हो गया और उसे जेल खाने में डाल दिया। वहाँ कुछ दिन हुआ था, 2-3 साल था, वहाँ बहुत कड़वा समय उसको बिताना पड़ा, लेकिन फिर भी यूसुफ परमेश्वर को नहीं छोड़ता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, उस पर भरोसा किए रहता है। यदि आपके साथ और मेरे साथ ऐसा होता तो हम क्या करते? जब हमारे ऊपर कठिनाई है आ रहे हैं, कठिनाई के ऊपर कठिनाई आ रहे हैं, और हम देखते हैं हम आगे क्या करें। बहुतों का विश्वास खो जाता, लेकिन परमेश्वर का धन्य हो, यूसुफ परमेश्वर पर भरोसा किया और परमेश्वर उसको नहीं छोड़ा बल्कि उसे आशीष दिया। अंत में हम पाते हैं कि यूसुफ को मिस्र देश का गवर्नर बना दिया जाता है, क्योंकि वह स्वप्न को बताया, उसका मतलब बताया जो उस देश में कोई नहीं बता सकता था। राजा फिरौन का स्वप्न को यूसुफ ने दर्शाया, यह परमेश्वर की ओर से हुआ, परमेश्वर उसके साथ था, जिसके कारण यूसुफ उस देश का गवर्नर बन गया और वहां के लोगों का अनाज प्रबंध करने लगा। बाद में उसके भाई, उसके 10 भाई उसके पास आते हैं अनाज खरीदने के लिए, और वह नहीं जानते हैं कि वह उसका भाई है। यूसुफ उनको अनाज बेचता है, बाद में उन्हें बहुत देर के बाद उन्हें बताता है कि वह उनका भाई था। वे लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि यूसुफ बदला लेगा, उनको सताएगा, उनको ताड़ना देगा, लेकिन यूसुफ उनको क्षमा करता है, कहता है कि यह परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर मुझे आगे भेजा, आपसे आगे भेजा यह अकाल के समय में, कि अकाल के समय में तुम लोगों को और तुम्हारे वंश को परमेश्वर बचा सके। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आपका करने के द्वारा नहीं, यह परमेश्वर का योजना था, आप मत डरिए। और इस तरह से यूसुफ उनको क्षमा करता है। प्यारो, इन कहानियों में हम पाते हैं कि बहुत समय ऐसा नहीं होता है जो हम चाहते हैं, वह दूसरा ही होता है, लेकिन फिर भी हम क्या परमेश्वर पर भरोसा करते रह सकते हैं? यदि हम परमेश्वर पर और उसके अच्छाई पर भरोसा करेंगे तो सच्चाई का जीत होगा, हम एक दिन विजयी होंगे और परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीष देगा। इसीलिए चलिए, जब भी हम पर कठिनाई होती है, हम परमेश्वर पर भरोसा करते रहें और परमेश्वर हमें मदद करेगा, वह हमें नहीं छोड़ेगा, वह हमें आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता इस वचन के लिए। हम सबों को तो ग्रहण कर, और जिस तरह यूसुफ का विश्वास तुझ पर था पिता, हम सबों को तुझ पर विश्वास रखे रहने के लिए मदद कर, ताकि हम तुझ में बने रहें। कुछ भी कठिनाई हमारे सामने आए, हम तुझ में विश्वास करके तुझ में बने रहे पिता। हम सबों को तो पहचान ले और हम सबों को तुम आशीष दे।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudavenTIST.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।